आकाश में जब भगवान अंतर्ध्यान होते हैं तब विरह में जब गोपियां रोती हैं,
इतना तो अब मालूम होने लग गया। अच्छा कौन गोपी रो रही है?
राधा, राधा नहीं, राधा तो साथ गई थी, बाकी बाकी सब ललिता विशाखा
नहीं, इसमें राधा जी है,
राधा जी
ललिता जी विशाखा जी पद्मा
उनको भी छोड़
गए, राधा जी को भी छोड़ कर गए।
नहीं, उसके पहले वो तो पहले का वो दूसरा है, ये है जब सभी मिल गईं, राधा जी भी अचेतन अवस्था में इनको मिली, राधा जी हा कृष्ण कर रही, हा नाथ हा रमन हा प्रेस्त क्वासी क्वासी महाभुज, माने क्या हुआ समझ में आ रहा है? हे नाथ रमन, रमन मैंने रमन क्वासी क्वासी महाभुज, लंबी भुजाओं वाले जिसमें अगरू के सुगंध लगे हुए हैं, सर्प की भांति गोल हैं, सर्प की भांति काटने वाले हैं, बिखैले हैं महा ये भुजाएं, जिसके गले में वो पड़ जाती हैं, उसका नशा और विष ऐसा होता है जो जन्म जन्मांतर कभी नहीं भूल जाता है। ऐसे ये भुजा वाले हैं, क्वासी क्वासी मैंने कहां हो कहां हो, आप कहाँ हैं, आप कहाँ, तुम कहाँ हो, क्वासी क्वासी माने, क्वासी माने कहाँ कहाँ हो, असी क्वा असी क्वासी कहाँ हो, आप कहाँ, प्राण विकल हो रहे हैं, अब मरने में मिनट भी देरी नहीं, ये सुना सको, अब पड़ेगी तो अब ये क्या होगा, अब जब पड़ेगी तो ये कुछ कुछ अब समझा। ऐसे ही 10 बार 20 बार 25 बार पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते और इसका अब जो पढ़ेगी ना भाव उसके ऊपर, कुछ दिनों के बाद में सचमुच में वो जीवंत हो करके ये कथाएं तुम्हारे अंदर में स्फूर्ति ला, ये कथाएं ही उस गोपियों के रूप में आएंगी और तुम्हारे हृदय को एकदम सरस बना।
आपके मुख से सुनने से बहुत सरल, जो मैं आपको बताया मैंने घन रजस्वलम सुना किसी के मुख से और एकदम वहीं पे जाने ये बात समझ आती है, और उसके लिए तो महाराज जब आपके पास बैठना पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं, इसका इसका वो आई वो कर दो आयोजन में।
तुम लोगों को देखने से ना हमको कृष्ण की स्मृति आ जाए। हमको वही सब चर्चा तुम लोग को सुनने में अच्छी लगती तो हमको चर्चा ये समझ में शरण आ जाती, वही भाव आ जाता है, हम लोग कभी नहीं भूलते। आपका शरीर कहता है अब क्या हो रहा है, दवाई ले आऊं, डॉक्टर बुलाऊं, ये करूं वो करूं, क्या खाएंगे क्या, ये सब अधिक नहीं है, ये सब चीज साधारण लोगों को प्रिय हो सकती है, हम लोगों को प्रिय नहीं, हम लोग को प्रिय ये सब चीज अनुसामिक रूप में उसकी भी जरूरत है, किंतु मूल में ये तुम लोग को देखने से भगवान की कथाएं जान, इसलिए तुम लोग हमारे प्रिय। अभी तो कुछ जोर जबरदस्ती लगा रहे हैं ना कृष्ण में,
आपके साथ तो स्वाभाविक
कृष्ण
में बात करते हो तो अपने आप लगता है कृष्ण में,
अभी कृष्ण में चित्त अभी जोर से लगाना पड़ता है, कोई स्मरण दिलाने पर कोई ऐसी बातें कहने पर लगता है जैसे हम कर रहे हैं तो लग रहा है, अपने आप नहीं
लगेगा, लोग जो सुना रहे थे बड़ी अच्छी लगती है, अभी लगता है आप सुनाते हैं अधूरी सुनाइए,
आप पूरा कर दो, आपको दिखाई दे रहा है आप सुनाई दे रहे और आप सुना रहे हो, अभी
इन लोग जब पूरी कर दो महाराज की वो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा तुम्हारा कहाँ से आ गया बगीचा, तुमने किया क्या इसके अंदर, न कोई एक फूल पौधा लगाया न पानी लगाया,
4 बजे से शुरू किया 5 बजे अब सब लोग आएंगे फिर कंटिन्यू हो जाएगा,
बोल रहे हैं कभी लोग का सुनते हैं तो चीजें सुनाते चल रहे हैं, हमारी दवा असर किया।
हमारा तो गोपियाँ ये बोलती हैं कि हाँ हम मर जाएंगी आपके बिना, तो ये
भूल जाते हैं हम कभी तो असल बात है कि तुम न मर जाओ
तो ना वो मर सकती है ना वो मर सकते हैं तो क्यों कह रही हैं
कर रही हैं मर रही हैं ना गोपियां भी और वो भी कृष्ण को अब कौन इतना प्यार से बुलाएगा कृष्ण को इतना प्यार कौन करेगा अब वो तो प्यार के भूखे वो तो भूखे मारे मरेंगे उनको कृष्ण को इतना स्नेह कौन देगा
उस मरने में ये भाव होता है इसमें शरीर का तो कोई खत्म होने का कोई बात ही नहीं
नर्वत लीला है ना नर्वत लीला नर के समान लीला है कि नर नहीं है
मरेंगे नहीं मरने जैसा भाव है
मरने से कोटि गुना भाव
अधिक है
था वो स्वप्न पूरा नहीं हुआ सुख की छाया तक नहीं मिलती आज विश्व के जितने बड़े बड़े राष्ट्र हैं जितने बड़े बड़े बुद्धिजीव हैं वे लोग संयुक्त राष्ट्र में मिल करके विश्व को सुखी बनाने के लिए चेष्टा करते हैं किंतु कुछ भी नहीं होता केवल आशा रहती है कि अभी ये होगा आज हम देखते हैं इस सुख की चेष्टा के लिए ये दुर्गापुर ये जो प्लांट बना इसका भी कारण यही है भारतवर्ष में उद्योग की उन्नति हो सभी लोग सुखी रह सकें और अब दूसरे दूसरे विदेशों के समान हमारे देश में भी ये चीजें हों यही नहीं आजकल जितने भी आविष्कार हो रहे हैं बड़े बड़े आविष्कार हो रहे हैं बड़े बड़े आश्चर्यचकित कर देने वाले बड़े बड़े आविष्कार हो रहे हैं रसोई घर से लेकर के डॉक्टरी में मेडिकल डिपार्टमेंट में और समस्त विषयों में नए नए आविष्कार हो रहे हैं किसी का शरीर खराब हो गया हृदय यदि नष्ट हो गया उसके बदले में दूसरा हृदय यहाँ पर आरोपण कर किया जाता है विशेष करके चमत्कार ऐसा हुआ अभी नए नए आविष्कारों में कम्युनिकेशन में जैसे कि आवागमन है एक आदमी विश्व का अमेरिका से यहाँ पर कुछ ही घंटों में पहुंच जाता है वहां पर क्रिकेट हो रहा है वहां पर कोई प्रेसिडेंट वहां के बोल रहे हैं अमेरिका के यहाँ के लोग कुछ बैठे देखते हैं कैसे मूवमेंट कर रहे हैं क्या बोल रहे हैं सब यहीं पर बैठे घर घर में बैठे हम लोग जान लेते हैं इस तरह से इन आविष्कारों से हम देखते हैं सुख के लिए ये सब चेष्टाएं हुई और समस्त विश्व एकदम एक मुट्ठी के समान एक जगह एकत्रित हो गया आने जाने में इतनी सुविधा हुई मन के समान तेज उड़ने वाले विमान बनाए गए अब कंप्यूटर के द्वारा न जाने और क्या उन्नति होगी स्वास्थ्य के संबंध में आप लोग देखते ही हैं और अब तरह तरह के ये सब कल कारखाने लगे हैं यो समझिए कि आज की सभ्यता का मेरुदंड यह कल और कारखाना हो गया है और मनुष्य भी एक तरह से कल और कारखाना लोहा के रूप में बदल गया है उन्नति बहुत हुई किंतु उन्नति में सुख क्या हुआ अभी विचार करें समस्त जगत एकत्र तो एक मुट्ठी में आ गया हम पड़ोसी एकदम जगत के अमेरिका और कहा भारत और ये सब लोग हो गए आज हम देखते हैं कि कलकत्ते में दिल्ली में और सब टाउनों में विश्व के न्यूयॉर्क और लंदन इत्यादि शहरों में मनुष्यों की इतनी भीड़ है रास्ते में ये चला नहीं जाता शरीर में शरीर का संघर्ष होता है किंतु किसी के प्रति हृदय निकट नहीं आया हृदय बहुत दूर हो गया प्रेम का अभाव आज समस्या खाने पीने की नहीं धन की उतनी समस्या नहीं है आज समस्या क्या है प्रेम की हम देखते हैं कि भीड़ में परस्पर आदमी धस करके एक आदमी गिर जाता है उसको उठाने वाला कोई नहीं है एक फ्लैट में हम लोग बहुत आदमी रहते हैं किंतु हम जानते नहीं है जैसे ये एक घर में आदमी मृत्यु हो गई और दूसरे घर में शादी हो रही है किसी के प्रति प्रेम की सहानुभूति नहीं आज स्त्री में और पुरुष में कोई प्रीति नहीं स्त्री का बैंक बैलेंस और सब कुछ अपना अलग एक लड़की का लड़का का अलग पिता का अलग
पितामह का अलग, एक जगह रहते हुए भी किसी में प्रेम नहीं है। आज की युग समस्या है प्रेम। यदि जगत में सब कुछ रहे और प्रेम ना रहे तो जगत मनुष्य जड़ है, कोई आदमी सुखी नहीं रह सकता है। इसलिए जगत में सुखी रहने के लिए दरिद्र होने पर भी यदि हृदय में प्रेम है तो प्रेम में परिवार एक साथ में बड़े प्रेम के साथ में रह सकता है, और प्रेम नहीं है तो विश्व की सारी संपत्ति रहने पर भी उस व्यक्ति को सुखी नहीं कर सकता। इसी समस्या को दूर करने के लिए हमें 500 वर्ष पहले श्री चैतन्य महाप्रभु के तरफ में हम लोगों को देखना अनिवार्य होगा। चैतन्य महाप्रभु इसी प्रेम को देने के लिए आए थे, धन देने के लिए नहीं आए, वो कर्म स्थापन करने के लिए नहीं आए, वो और किसी व्यक्ति चीज के लिए नहीं आए। ये सब तो अपने आप ये होता रहेगा। आज तक आप लोगों ने देखा होगा, आप रामायण की तरफ में देखिए, सोने की लंका बनी, सोने का सभी कुछ, प्रेम नहीं रहने के वजह से उस सोने की लंका की क्या दशा हुई, एक दिन के अंदर में जला करके उसको हनुमान जी ने राख कर दिया। धन की कमी तो महाभारत के समय में दुर्योधन के यहां भी धन की कमी नहीं थी, किंतु नारी का जैसा अपमान हुआ, जिस प्रकार से प्रेम का अभाव हुआ, भाई भाई में प्रेम नहीं रहा, उस समय में देखिए क्या दुर्गति हुई। 18 दिनों में ही हमारी भारत की सभ्यता कहिए सब कुछ समाप्त हो गई। इसी तरह से यदि प्रेम नहीं है, सर्वस्व सब कुछ है, ये जितने प्लांट क्या अभी इसके अतिरिक्त और भी लाखों प्लांट यहां पर होंगे और विश्व की सारी संपत्ति भी आ जाएगी, सुखी नहीं कर सकती एक चींटी को नहीं, एक मनुष्य की तो बात भी क्या। इसलिए यदि सुखी रहना है, शांति रहना है, तो चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों पर हमको चलना पड़ेगा। जीव का जितने भी विश्व में जीव है, महाप्रभु जी का यह विचार है, हम लोग देखने में मनुष्य हैं, मनुष्य नहीं, केवल मनुष्य तक हम सीमित नहीं है, मनुष्य के प्रति हमारा आदर रहे, केवल यही नहीं, जीव मात्र का स्वरूप है कृष्ण का नित्यदा। अपने अपने कर्मों से 84 लाख प्रकार के जोनियों में वो भ्रमण कर रहे हैं, अपने अपने कर्मों के फल से। यदि धन ही सुख देता, यदि गौरव ही सुख देता, यदि जगत की बुद्धि सुख देती, आज हम कुछ दिन पहले देखते हैं हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और उनके लड़के राजीव गांधी थे और दूसरा लड़का संजय गांधी, वो यदि रहते, यदि पहले नहीं मर जाते तो वही प्रधानमंत्री होते। ये पीछे से प्रधानमंत्री हुए, रुपये की कमी नहीं, बुद्धि की भी कमी नहीं, भगवत भाव का अभाव था, इसलिए उनकी क्या गति हुई। जवाहरलाल जी थे, विश्व में सभी उनको जानते थे, किंतु मरते समय में एक ग्लास पानी उठा करके नहीं पी सके। यही तो जगत की दशा है बड़े बड़े लोगों की, साधारण लोगों की तो बात ही क्या है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु आए, अनर्पित चरिं चिरात करुणया वतीर्णः कलौ समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वल सांसा भक्ति श्रियं हरिः पूर्व सुंदर दूत कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे सुरत में सचिनंदन। चैतन्य महाप्रभु जुग जुग से जिस प्रेम की कमी है उस प्रेम को देने के लिए आए। यद्यपि कृष्ण चंद्र जी आए थे, कृष्ण स्वयं भगवान है, वो आए, इससे पहले रामचंद्र जी भी आए और भी अवतार आए, कृष्णचंद्र जगत में आए, लता तक को भी प्रेम दिया, यह बात ठीक है, किंतु चैतन्य महाप्रभु जी आए उनमें कुछ वैशिष्ट है। यद्यपि कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु हैं, किंतु दान के विषय में कुछ वैशिष्ट है। चैतन्य महाप्रभु इस प्रेम को देने के लिए आए, कृष्णचंद्र आए प्रेम का आस्वादन करने के लिए। इसलिए राधा या प्रण महिमा इत्यादि में चैतन्य चैतामृत में बहुत कुछ उसमें विश्लेषण किया गया है, हम संक्षेप में कुछ बतलाएंगे क्योंकि आप लोगों के लिए भी बहुत देर हो गई है और सबके लिए भी देर होगी। चैतन्य महाप्रभु किस लिए आए, बहुत से कारण हैं, युग धर्म की स्थापना करने के लिए, नाम और प्रेम को देने के लिए। अद्वैताचार्य की प्रार्थना से वो जगत में न जाने कब आते, कोई ठीक नहीं था। हो सकता है कि कलयुग के अंत में चैतन्य महाप्रभु आते, किंतु उनकी प्रार्थना से ये कलयुग के पहले ही संध्या में वो करीब करीब 5000 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु आए। 500 वर्ष पहले, हाँ, आज से 500 वर्ष पहले। इसके बाद में और एक कारण है, प्रेम देने के लिए, और एक है प्रेम आस्वादन करने के लिए। अभी हमारे पूर्ववर्ती वक्ता महोदय सीसी महाराज, क्या नाम, त्रिविक्रम महाराज जी चैतन्य महाप्रभु के विचार को बड़े सुंदर रूप से जीव तत्व इत्यादि के संबंध में बहुत ही सुंदर विचार उन्होंने प्रकाश किया। यही चैतन्य महाप्रभु की यही वाणी और विचार है। और इसके बाद में हमारे भारती महाराज जी ने महाप्रभु जी के मुख अवतार का कारण इन्होंने बतलाया। इसके सुनने का अधिकारी बहुत कम है। चैतन्य महाप्रभु के लिए बतलाया गया, अनर्पित चरिन चिरात करुणे आवतुर न कलौ। चैतन्य महाप्रभु करुणा के सागर हैं, स्वयं द्रवित होकर के करुणा से जगत के लोगों पर कृपा करने के लिए, अत्यंत सहज रूप में प्रेम को दान करने के लिए आए। वह प्रेम क्या, उन्नत उज्ज्वल रसांग स्वभक्ति श्रियम। आज तक जो प्रेम बहुत दिनों तक नहीं जो अर्पित किया गया था, कितने दिन तक, ब्रह्मा के एक दिन में, जिस समय चैतन्य महाप्रभु इससे पहले आए थे वहां से लेकर के आज तक नहीं दिया गया, कभी दिया ही नहीं गया। ऐसा नहीं दिया गया था बहुत पहले, किंतु आज बहुत हो गए वर्ष, कितने कलयुग और सतयुग बीत गए। ब्रह्मा जी के एक दिन पहले चैतन्य महाप्रभु आए थे, उस समय में ये प्रेम दिया गया था, अब उसी को देने के लिए आए हैं। कौन सा प्रेम, यहां पर एक बहुत ही सूक्ष्म भेद है। जब चैतन्य महाप्रभु आए राधा जी के प्रेम को देने के लिए, तब इसमें एक प्रश्न आ जाएगा। राधा जी कृष्ण प्रेम के महाभाव की अवस्था है, उनका समस्त अंग ही महाभाव से गठित है, और उसमें महाभाव के ऊपर में मादन मोदन इत्यादि भाव है, जो कि राधा जी के अतिरिक्त और किसी में भी नहीं है। क्या इस प्रेम को देने के लिए, उन्नत उज्जवल प्रेम को देने के लिए आए? नहीं, इसको दिया नहीं जा सकता, ये तो राधा जी का ही एकमात्र भाव है। इसी के आस्वादन करने के लोभ से राधा या प्रणय महिमा की दृष्टि, ये राधा जी की प्रणय महिमा है, कैसी है, और कृष्ण में जो स्वयं भगवान है उनमें क्या प्रकार की विशेष माधुरियां हैं, रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी और वेणु माधुरी, और किसी भी भगवत अवतार में ये चीजें नहीं है। विशेष करके और जितने भी अवतार आए हैं उनमें कुछ ऐश्वर्य भाव प्रबल रहता है, उनमें अलौकिक क्षमता होती है, किंतु कृष्ण जो ब्रजेंद्रनंदन श्याम सुंदर के रूप में आए उनमें ऐश्वर्य माधुर्य के द्वारा आच्छादित होकर के आया। ऐसा उन्होंने लीला किया कि कृष्ण मानो हमारे समाज के ही हमारे प्रिय बंधु हैं, हमारे सखा हैं, हमारे पुत्र हैं और हमारे प्रियतम प्राण प्रियतम है। इस रूप में उन्होंने लीला का प्रकाश किया। रामचंद्र जी आए किंतु मर्यादा को ठीक रख करके, भगवत्ता को ठीक रख करके, किंतु कृष्णचंद्र जी उस भगवत्ता को भी दूर करके, दूर नहीं उसको छिपा करके, माधुर्य को, माधुर्य माने क्या, नर लीला के अनुरूप जिसको हम सहज रूप में ग्रहण कर सके वैसे भावों को लेकर के हमारे अपने प्रियतम बंधु, हमारे पुत्र, हमारे सखा, हमारे सर्वस्व, ऐसे होकर के कृष्णचंद्र जी आए। राधा जी ने इसको सबसे अधिक प्रियतमा के रूप में ग्रहण किया। वह भाव किसी दूसरे में नहीं आ सकता, इसलिए इस चारों माधुरियों का आस्वादन श्री कृष्ण चंद्र जी स्वयं करने के लिए राधा जी का भाव और उनकी अंग कांति को ग्रहण किया। इसके संबंध में हमारे पूर्व वक्ती वक्ता जी ने कुछ बतलाया। तीसरा, उनको आस्वादन करके कौन सा सुख हुआ। इन तीन चीजों के लिए चैतन्य महाप्रभु जी का रूप धारण करके कृष्ण ही स्वयं राधा जी का भाव अंग कांति लेकर के आए। देने के लिए नहीं, किंतु क्या देने के लिए, करुणया यवतीर्ण करू कि समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसां स्वभक्ति श्रेयम। इसको थोड़ा सा समझने की चेष्टा करेंगे। एक होता है भगवान का विषय भाव, एक होता है आश्रय भाव। प्रेम का आश्रय भाव श्रीमती राधिका जी में संपूर्ण रूप से है। उसमें भी कहना तो नहीं चाहिए, तभी मैं बतला रहा हूं, योग्य अधिकारी कम है तभी बतला रहा हूं। एक पार्थिव भाव है जो चैतन्य महाप्रभु जी के हमारे परिकर रूप गोस्वामी जी जगत में प्रकाश किया। इससे बढ़कर के प्रेम का और कोई दूसरा भाव नहीं हो सकता। यही राधा जी का अपना निजस्व भाव है। इनके इस भाव को उन्नत उज्ज्वल रस कहते हैं। ये दिया नहीं जा सकता, उसके शोभा को
जाति निपत्त भूमि दंडवत फटारती ಅಂಗಶ್ಯಾಮಲಿಂಚತಾಧಿರವಿತೋ ಮಂದೇ ಕೃತೇಂದೀವರಂ ಜಗಂಜಗುಡರೋಚಿಸಾಂಗಿಲಭತಂ ಪಟ್ಟಂ ವರಸ್ಯ ಶ್ರಿಯ ಬಿಂದಾರಂದನಿವಾಸಿನಂ ಸದಿಲಸದ್ದಾಮಾಭಿರಾಮೋದರಂ ರಾಧಾಸ್ಕಂದನಿವೇಶಿತೋ ಜಲಭುಜಂ ಧ್ಯಾಯಿಂ ದಾಮೋದರಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ವಿಹೀನಾ ಪರಾಧಲಕ್ಷೈಃ ಕ್ಷಿಪ್ತಾಶ್ಚ ಕಾಮಾದಿತರಂಗಮಧ್ಯೆ ಕೃಪಾಮಯೀಂ ತ್ವಾಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪನ್ನ ಬೃಂದೇ ನಮಸ್ತೆ ಚರಣಾರವಿಂದಂ ಬೃಂದೇ ನಮಸ್ತೆ ಚರಣಾರವಿಂದಂ ಗುರವೇ ಗೌರಚಂದ್ರಾಯ ರಾಧಿಕಾಯೈ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಾಯ ಸದಭಕ್ತಾಯ ನಮೋ ಯಂ ಪ್ರವ್ರಜಂತಮನುಪೇತಮಪೇತಕೃತ್ಯಂ ದ್ವೈಪಾಯನೋ ವಿರಹಕಾತರಯಾಜುಹಾವ ಪುತ್ರೇತಿ ತನ್ಮಯತಯಾ ತರವೋಭಿನೇದು ತಂ ಸರ್ವಭೂತಹೃದಯಂ ಮುನಿಮಾನತು ನಜಿವಾಮಿ ತ್ವಯಾ ವಿನಾ ಇತಿ ವಿಜ್ಞಾಯ ರಾಧೆ ತಂ ನಯಮಾಂ ಚರಣಾಂತಿಕೆ। ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಅಂತಲೀಲಾ ಅಂತಿಮ ವಿಂಶ ಪರಿಚ್ಛೇದ। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी तैयार नीला चले दिवस रजनी कृष्ण विरहे दिह वाले दिवारात्र कृष्ण विरहे थे तीन अत्यंत दिवल तरु रामानंद दुजन सने रात्रि दिने रस गीत श्लोक आस्वादन तरु दामोदर राय रामानंद दुजन सने दिवारात्र रस गीत मने जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद मैथिल कोकिल विद्यापति चंडीदास ब्रह्म संहिता इत्यादि पदावली गुली रारामानंद रचित स्वरचित कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ दिन रात गीत श्लोक की हमारे पूर्व महाजन रचित विशेष विशेष रसिक भक्तगण श्लोक श्रीमद्भागवत श्लोक नाना प्रकार अर्थ कर दिए और से समस्त बोली श्रवण एवं कीर्तन एवं आस्वादन करे नाना भाव उठे प्रभु हर्ष शोक रोष दैन्य उद्वेग उत्कंठा संतोष से भावे निज श्लोक पढ़िया श्लोकर अर्थ आस्वादे दुई बंधु लइया नाना भावे उठे जखन आमादे चित्त मन अन्य कोनो व्यक्ति चित्ते आविष्ट कर दिया जाए जाके बोले तदात्म और आमादे साधन इत्यादि भावे ते आमादे रूप गोस्वामी की जीव गोस्वामी विशेष करे प्रति संदर्भे ते एके बोलें कि करण समानीकरण समानीकरण माने कि और चित्तता निजे चित्तता एक करे एक समान कर दिल एक लोक कोनो कथा बोल और एक तो लोग हासे केन हासे केन हासे केन
अंतरे कथा बोले दिए
वही एक समान हो गए तो আর এক কথা একটি লোকের দেখে দুঃখ আর একটি লোক কান্না দেখে একটা লোক কেঁদেছে কেন ও চিত্তটা ওর চিত্তটা এক সমান করেন একে বলে সমানীকরণ ওই রকম হয় ভক্তি রাজ্যেতে চিত্ত যারা সমানীকরণ করতে পারে তারা ভজন করতে পারে এদের ভজনের নাম হচ্ছে সাধন ভজন যারা সমানীকরণ অবিকরণ করতে পারে নাই তাদের অভি হরিভজন বহু অভি দূর আছে এই হরি কথা সময়েতেও যদি শ্রোতা বক্তার হৃদয়ের সমানীকরণ করতে পারে তারে তাহার উল্লাস হবে আর তাহার প্রত্যেকটি জিনিস গ্রহণ করতে পারে আর যারা সমানীকরণ করতে পারবে না তারা কিছুই গ্রহণ করতে পারবে এর উপরে সব নির্ভর ওই রকম হচ্ছে সাধনেতে বিশেষ করে রাগানুগা ভক্তিতে রাগময়ী তো বহু দূরে রাগময়ী ভক্তিতে আমার চিত্ত থেকে সব প্রকারকে শোধন করে দিয়ে ও চিত্তের সঙ্গে মিলিয়ে দিব চৈতন্য মহাপ্রভু যাবতীয় তাহার চিত্ত বিচার ভাব যা কিছু শ্রীমতী রাধিকার সঙ্গে সমানীকরণ করে দিয়েছে এই জন্য তাহার হৃদয়তে যে যে ভাব যে যে সময়তে উঠতে পারে মহাপ্রভু হৃদয়তে সেই সমস্ত ভাবগুলি ঠিক ওই রকম হয়ে যায় দেখি সমানীকরণ রাগানুগা ভজনেতে এতে চিত্ত যারা সমানীকরণ করতে পারে তাহাদের রাগানুগা ভজন হল রাগানুগা ভজন কি রাগানুগা ভজন যাদের রাগ হয় নাই অথচ লোভ হয়েছে যাদের ভগবানের প্রতি প্রীতি হয় নাই রাগ হয় নাই অনুরাগ হয় নাই প্রেম হয় নাই কিন্তু প্রেমের প্রতি একটা লোভ হয়েছে, বিবাহ হয় নাই কিন্তু একটা মেয়েকে দেখে খুব লুব্ধ হয়ে গেছে, কি একটা পুরুষকে দেখে একটা মেয়ে লুব্ধ হয়েছে, কিন্তু বিবাহ হয় না। ঠিক তদ্রূপ তাহার কৃষ্ণের প্রতি, কৃষ্ণের যে পরিকরগণ তাহার প্রতি যে প্রীতি অনুরাগ হয় নাই, কিন্তু বৈষ্ণবদের মুখেতে তাহাদের অনুরাগের কথা শুনে ওই অনুরাগটার প্রতি একটা লোভ হয়েছে যে আমারও এরকম। এখন ওই লোভ হয়ে যখন যা সাধন করছে তখন তাহার নাম হবে রাগানুগা সাধন। বৈকুণ্ঠে তো নাই, তা ব্রজেতেও নাই, দ্বারকাতে নেই, কোথাও তো নাই, কোথা আছে? সাধন ভূমিকাতে আছে, অবিরাগই হয় নাই, তাহলে ওখানে কেন যাবে? অনেকে বুঝতে পারে না যে রাগানুগা কাকে বলে, রাগাত্মিকা কাকে বলে, কাকে বৈধি কাকে বলে, এই যে কিছুই বুঝে না। বুঝবে কেন? গজ 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 বিষয় করছে দিন রাত, ওই চিন্তা, ওই সব চিন্তা, কোথায় চিন্তা, কোথায় যাত্রী পাওয়া যাবে, কোথায় কি করা যাবে, এইটাই ভক্তি মনে করছি, যে জীবন যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এইটা বিচার করছি না, খারাপ মনে করবো না তোমরা। চব্বিশ ঘন্টা একটা লক্ষ্য করবে, সাধন কাকে বলাবে, একটা সাধ্য তাহার নির্ণয় করেনি, সাধ্য পাওয়া যায় না, সাধ্যকে পাওয়ার জন্য লোভ হচ্ছে, ওইটাকে লক্ষ্য রেখে দিয়ে যখন সাধন করছে তখন তার নাম হচ্ছে সাধন। ভাবকে লক্ষ্য রেখে যখন আমরা সাধন করছি তখন তাকে কি বলা হবে? সাধন ভক্তি। আমাদের লক্ষ্য কি? ভাব। ভাব ভক্তি কাকে বলা যাবে? প্রেমকে লক্ষ্য রেখে যখন ভাব ভক্তি করা হবে তখন তার নাম হচ্ছে ভাব। আমি কোনো লক্ষ্য রাখি নাই, কোনো আমার সাধ্য নাই, হরি নাম করছি, এটাকে কি ভক্তি বলা হবে? আমার কোনো লক্ষ্য নাই, কোনো সাধ্য নাই, হরি নাম করছি, হরি কথা শুনছি, পরিক্রমা করছি, এটাকে কি বলা হবে বলতো? আমি একলা হরি নাম করি, আসনও করছি, কিন্তু আমার কোনো লক্ষ্য টক্ষ্য নাই, কোনো সাধ্য নাই, বিদাকে কি বলা হবে ভাই? আমার ভক্তি হোক এইরকম, আমার ভক্তি সাধারণ ভাবে কি বলা যাবে? এরকম হতে পারে কি না? হতে পারে তো, এরকম হয়তো, কোন লক্ষ্য নাই, গুরুদেব বলেছে যে হরি নাম করো, হরি নাম করছি, আর আর সব কত রকমের কাজ করছি, আর পরিক্রমা করছি, তুলসীকে জল দিচ্ছি, কোনো আমি লক্ষ্য স্থির করি না যে আমি কি আমার গন্তব্য, কি আমার উদ্দেশ্য, সাধন আমার সাধ্য আমার কোনো আছে কিনা এটা ঠিক রাখি না, তখন একে কি বলে যাবে? বৈদিক ভক্তির মধ্যে তো একটু সাধ্য তো চাই, এই জন্য সনাতন গোস্বামী বললেন যে সে সাধ্য সাধন কিছু পুছিতে না জানি, বললেন না সাধ্য সাধন তুমি আমাকে বল, আর শ্লোক বলো। রায় রামানন্দকে এই প্রশ্ন করলেন, তুমি সাধ্য সাধনের শ্লোক পড়ো, শুধু সাধন বললেন কি, সাধন বললে কি সাধন? এই জন্য ওটা হয়ে যাবে কি, যদি লক্ষ্য না থাকে তাহলে মনের ভিতরে যদি থাকে যে আমার প্রতিষ্ঠা বাড়ুক, আমার ধন সম্পত্তি এই সবগুলি বাড়ুক, তাহলে এইগুলি কি হয়ে যাবে? এই জন্য হয়ে যাবে ঔপাধিক ভক্তি, সঙ্গ সিদ্ধা অথবা আরোপ সিদ্ধা অথবা সকাম ইত্যাদি হয়ে যাবে, কারণ লক্ষ্য স্থির নেই। এই জন্য এটাকে লক্ষ্য স্থির রাখতে হবে, একটা সাধ্য সাধন হলে একটু সাধ্য হবে, সাধ্য নাই সাধন হবে কি? শ্রদ্ধেই নাই। আমাদের অধিকাংশ লোকের এইরকম সাধ্য নাই, সাধন আছে। হ্যাঁ, মানে চিত্তটা বিক্ষিপ্ত আছে, তো আমি টাকা পয়সা চাই, ধন সম্পত্তি চাই, ভক্তিও চাই, কিন্তু কি ভক্তি চাই সাধন স্থির করতে পারে, এই জন্য বিক্ষিপ্ত হয়ে এদিকে ওদিকে চলে যায়। আর যখন একেবারে স্থির হয়ে গেল, আমি কৃষ্ণ প্রেম চাই, আমার নাই, কৃষ্ণ প্রেম কিরকম চাও, যেরকম যশোদা মায়ের ছিল, উনা শুনে ভাবা, কেউ বলে যে আমার একমাত্র ভাব চাই কিশোর কিশোরীর প্রতি যে প্রীতি আছে, যে আমাদের নরোত্তম ঠাকুর বলেছেন, রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর, জীবনে মরণে গতি আর গতি আর নাই মোর, এই আমার সাধ্য, এই খুঁটাটা গেড়ে দিলাম সাধ্যেতে, আর তখন শ্রবণ কীর্তন স্মরণ ইত্যাদি করতে রাখ, তখন ওটা কোন জাতি শ্রবণ করবে, স্থির হয়ে গেছে তো, কোন জাতি তার ভালো লাগবে, আর কোন ভালোই লাগবে না। আবার ওর মধ্যেও আবার একটু বিচার আসবে, রাধাকৃষ্ণের যুগলের উপাসনা করছি, কিরকম উপাসনা চাও, কিরকম কৃষ্ণকে পেতে চাও, কৃষ্ণের প্রতি তোমার সেবা ভাও, নাকি শাখাচারী যেরকম আছে সেরকম, নাকি যাতে না আমার ও প্রতি নাই, আমার রঘুনাথ প্রতি রূপ গোস্বামী প্রতি শ্রদ্ধা আছে, এরা যেভাবে চেয়েছে আমার ওইটা দরকার, পাদাব্যয় তব বিনা বরদাসনি নন্নাক কদাপি সময়ে কিল দেবী চাচি সখ্যায়তে মম নমস্ত নম, রাধা কৃষ্ণ দুজনের আমি সখী ভাবাপন্ন হয়ে থাকুক, এই আমার দরকার, ও আমার মস্তকেতে থাকুক, তোমার কি দরকার, নমস্ত নমস্ত নিত্যম দাস্যায়তে মম রসস্তু রসস্তু সত্য, আমি সত্য সত্যকালে বলছি, আমি কোন রকম লুকাচ্ছি না, আমার শ্রীমতির অধিকার, আমার দাস্য আমার হৃদয়তে উদিত, এছাড়া আমি কিছু চাই না, এই জন্য ভজামি রাধাম অরবিন্দ নেত্রাম স্মরামি রাধাম মধুরস্মিতাস্যাম বদামি রাধাম করুণাভরাদ্রাম ততো মম নাস্তি গতির্ন কাপি গতির্ন কাপি গতির্ন কাপি, এতে স্থির হয়ে গেল তো, এই স্থির করে দিয়ে তখন এখন অবধি পুরা হলো না, রাধিকার দাসী হলো, অবধি স্থির হলো না যে সে কিরকম, তখন হলো যে আমার গুরুদেবের রাধিকার প্রতি যেরকম দাস ভাব আছে, তার গুরুদেবের যেরকম আছে, মানে পরম গুরুদেব কে হলো, ছিল সরস্বতী ঠাকুর, তো আমাদের গুরুদেব হলেন কি, তিনি কি বলছেন, রাধা চিন্তা নিবেশে ন যস্য কান্তির বিলোকিতা, রাধা চিন্তা যস্য কান্তির বিলোকিতা শ্রীকৃষ্ণ চরণম বন্দে রাধা লিঙ্গিত বিগ্রহ, রাধা লিঙ্গিত বিগ্রহ মানে কি, রাধা লিঙ্গিত বিগ্রহ মানে বলো তো পণ্ডিত, মানে আরো একটু স্পষ্ট করে, হরিনাম করতে সময় এই সবগুলি চিন্তা করতে হবে, তাহলে এইগুলি হবে, হরিনাম করবার সময় এদিকে ওদিকে বগল ঝাড়ছি হরিনামের ঝক্তি, এটা হবে না, সব সময় দিবারাত্র এই বলছে না, দিবারাত্র রাত্রি দিনে এই সবগুলি আস্বাদন করছে, দিবারাত্র, আর যদি বিক্ষেপ করে এদিকে ওদিকে চিত্ত নিয়ে যাবে তাহলে ওখানে যাবে, মনটা কিসে, জড়ের তো, জড় বিষয়ের থেকে নির্মিত, এই জন্য জড় বিষয়পত্র স্বাভাবিক লাগবে, একেবারে ওটাকে ছেড়ে দিয়ে আর এইদিকে সব সময় লাগাও তাহলে লাগতে পারে, অন্যথা মুশকিল, কি প্রশ্ন করলাম, রাধা লিঙ্গিত বিগ্রহ মানে কি, চিন্তা চিন্তা কর, কৃষ্ণকে আমি বন্দনা করি কিন্তু রাধা লিঙ্গন করেছে, এত সাধারণ এই তর্ক। বিশেষ অর্থ মানে কি, রাধা আলিঙ্গন করেছেন কৃষ্ণকে নিজে প্রত্যেক অঙ্গেতে, প্রত্যেক অঙ্গটা ঢেকে দিয়েছেন, আর তাহার ভাবটাকে নিজে ভাবের দ্বারা সাধন করে দিয়েছেন। এইরকম রূপ কি ওটাকে চৈতন্য মহাপ্রভুর এটা সমস্ত অঙ্গ দ্বারা কৃষ্ণ অঙ্গকে ঢেকে দিয়েছেন। কৃষ্ণ আর নাই, কৃষ্ণ লুকিয়ে গিয়েছেন, ছিপে গিয়েছেন, হ্যাঁ, প্রত্যেক অঙ্গের দ্বারা প্রত্যেক অঙ্গ ঢেকে দিলেন, এমনকি তার মনের দ্বারা উনার মন ঢেকে দিলেন, উনার চিত্তের দ্বারা উনার চিত্ত ঢেকে দিলেন, উনার ভাবের দ্বারা উনার ভাব ঢেকে দিলেন, আর উনার কোন চিহ্ন উপর থেকে রাখতে দিলেন না একেবারে। তথাপি কৃষ্ণের যে রূপ একটু ঝলঝল করছে, যেরকম হয়তো একটু কোন লোক কাপড় পরে নেয় না, ফিনফিনে কাপড় মানে অত্যন্ত পাতলা, তাহলে রূপ তার ঝাঁকি মারে না ভিতর থেকে, উঁকি মারে, ওইরকম কৃষ্ণ উঁকি মারছে। এখন ভিতরেতে আছে উজ্জ্বল নীলমণি, আর উপরেতে কি হলো শুদ্ধ খাঁটি স্বর্ণ, তার মধ্যে থেকে ওইটা এখন দুটা মিশ্রিত হয়ে প্রভাব আছে বেশি গৌর রঙে, কিন্তু তার মধ্যে থেকে নীল বর্ণ একেবারে ঝলঝল করছে। তো ওই রকম হতো ওই যে মরকতমণি তাকে যাকে বলে ওই রাধা লিঙ্গিত বিগ্রহী চৈতন্য মহাপ্রভুকে আমি বন্দনা করি। এইটা ভাব কেন কৃষ্ণ ফকর যা প্রকাশিত হবে এই রাধা লিঙ্গিত বিগ্রহ যে চৈতন্য মহাপ্রভু, তার মধ্যে এই সব ভাবগুলি আরো ঝলঝল। আমার বলবার তাৎপর্য এখানে এটি যে সাধ্য নির্ণয় হোক, ওর মধ্যে বলি সাধ্য, সাধ্য ঠিক হলো না তো সাধন কি করবে, আমাদের কোনো সাধ্যই ঠিক নাই, সাধন করছি কি সাধন করছি কিছু ঠিক নেই, এই জন্য তার ফল কি হবে, ওই ধন সম্পত্তি টাকা পয়সা প্রতিষ্ঠা পূজা লাভ ইত্যাদি, অথবা এ থেকে বেশি গেল তাহলে মোক্ষ, এ থেকেও বেশি গেল তাহলে যদি কোনো নাম হয়ে গেল ঠিক কি সাধন হয়ে গেল, তাহলে ওই চলে যাবে ওই চার প্রকারের যে মুক্তির স্থান ওই পর্যন্ত বা শেষ, সাধ্যই নেই। এই জন্য বিচার করে দেখব এইরকমের সাধন ভজন করব। এখন হলো যে সে সমানীকরণ আমি বললাম, এটা রাগানুগা ভজনেতে সমানীকরণ হবে কখন, যখন আমার সাধ্য নির্ণয় হয়ে যাবে তখন, তখন সমানীকরণ কিসে হবে, কৃষ্ণের প্রতি সমানীকরণ হবে, বিষয়ের প্রতি না আশ্রয়ের প্রতি হবে, বিষয় পরে বিষয় প্রতি তো, হ্যাঁ, যাহার ভক্তিটা আমি চাচ্ছি, যাহার আনুগত্যটা চাচ্ছি তাহার প্রতি, হ্যাঁ, কৃষ্ণকে স্মরণ করবে কিন্তু তদপেক্ষা বেশি স্মরণ করবে, তার মধ্যে বিভাবিত হবে কার মধ্যে, সমানীকরণ হবে কার মধ্যে, যাহার জনন চাচ্ছ, তাহার যারা সেবা করে তাহাকে সন্তুষ্ট করছে সব থেকে বেশি তাহার। এখন আমাদের সমানীকরণ হবে কার প্রতি, গুরুপাদ পদ্ম ওই ভাবতে যুক্ত যিনি আছেন, প্রভুপাদ কি বলছেন এটা তো গুরুদেবের বললাম, প্রভুপাদকে বলছেন নমো বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণ পৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ইতি নামে শ্রী বাস ভানবী দেবী দ্বৈতায়, দ্বৈতায় মানে কি বাস ভানবী দেবীর অত্যন্ত সেবার দ্বারা সন্তুষ্ট করে তাহার অত্যন্ত প্রিয় হয়েছেন যিনি, আর ইনি কি বলছেন শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদরূপ পদাম ভোজ ধুলি সাত জন্মনি জন্মনি, প্রায় যখনই কোন শ্লোক কোথাও বক্তৃতা প্রভুপাদ করবেন, হে সাধব সকলামে বিহায় দূরে, আর একটা বলছেন মহা রূপ গোস্বামী প্রণাম করে श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदांतिकम् आदानस्त्रीणं दन्ते पुनः पुनः किमदरूप पदाम्भोज धूलि चार जन्मनि এই জন্য আমাদেরকে সমানীকরণ হবে এদের প্রতি, রূপ গোস্বামী রঘুনাথ দাস গোস্বামী এদের প্রতি আমাদের হবে, এদের যে ভক্তি ওইটি আমাদের প্রাপ্য। ললিতা দেবী গুরু থাকুন, বিশাখা দেবী গুরু থাকুন, আর সব লোক গুরু থাকুন, কিন্তু সমানীকরণ হবে এই এইগুলি ভাবের প্রতি, তাহলে আমাদের ওই রকমের ভক্তি হবে। কারণ ওই রকম হয় ভক্তি জীবের স্বরূপের তা প্রাপ্য নহে, এদের মতন ভাবটা আমাদের প্রাপ্তি হতে পারে। যদি ওই রকম অধিকার ওই রকম সঙ্গ ওই রকম হতে দুর্লভ ভজন যদি কেউ করতে পারে তাহলে ওইগুলি বুঝবার চেষ্টা করবে। নানা ভাব উঠে প্রভুর হর্ষ শোক রোষ, এখন এর মানে কি কিছুই নেই, এই অবস্থাতে কোনো মানে নেই। কোন অবস্থাতে মানে হবে যখন সেগুলি সমানি করবো চিত্ত মহাপ্রভুর সঙ্গে, অন্তত মহাপ্রভু প্রতি নাই হোক স্বরূপ দামোদর রায় রামান উনাকেও ছেড়ে দিলাম, নিচে এক স্তর নিচে নিয়ে আস রূপ রঘুনাথ, রূপ রঘুনাথের সঙ্গে সমানীকরণ করতে গেলে কোথায় যেতে হবে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর কাছে, কারণ উনি ওদের ভাব এইটা চৈতন্য চৈতামিত মধ্যে তিনি লিখেছেন। শুনেছি যে প্রভুপাদ নাকি এরকম বলেছেন, যদি কালক্রমেতে কোনো কারণবশত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা আমাদের বেদ উপনিষদ